الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم کی کلاس میں شروع کر رہے ہیں. آج جو ہے پہلی کلاس نہیں ہو سکی کیونکہ آپ کے جو اس کلاس کے استاد ہیں وہ سفر پر ہیں. کہاں تھے ہم سیرت النبی میں؟ یہ محمد نعمان ہے جی. ہاں، کسرا جو تھا پرشیا کا کنگ، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. تو ہوا کیا کہ کسرا کا جو بیٹا تھا، شیرویا نام تھا، تو اس نے جو ہے نا اپنے باپ کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے غلطی سے زہر کھا لیا، اور زہر کھانے کے بعد اس کا بھی وہ بھی چل بسا. پھر اس کے بعد جو ہے ایک بیٹی تھی کسرا کی، کسرا کی، تو وہ بنی بادشاہ ملکہ بلکہ، تو وہ بھی زیادہ عرصے جو ہے نا وہ حکومت نہیں کر سکی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے ایک اور بھی پڑھنا شروع کر دیا جی. نجاشی کا بھی ہم نے واقعہ پڑھ لیا تھا، لیکن بالکل آخری واقعہ جو تھا نا، کوئی آن لائن جواب دے گا؟ بالکل آخری کون تھا؟ مسلمان نہیں ہوا تھا. اچھا، نہیں، بیٹا تو نجاشی نے بھیجا تھا جو کہ ڈوب کے مر گیا تھا 60 اور لوگوں کے ساتھ. اس نے کچھ اور بھیجا تھا، یہ جو ہے نا یہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بالکل آخری والا تھا نا. اچھا، کوئی صرف ملک کا نام بتا دے آن لائن تو صحیح جواب آ گیا. ملک کا نام ہے کائرو. ہاں، کائرو کس ملک میں؟ جی ایجپٹ، صحیح ہے، مصر، قاہرہ، کیونکہ کائرو کی جو ٹرانسلیشن بنتی ہے نا عربی میں وہ تو قاہرہ بنتی ہے، تو قاہرہ جو شہر ہے وہ مصر کے اندر ہے، ایجپٹ کے اندر. ٹھیک ہے، تو مصر کا جو بادشاہ تھا نا، مکوکس اس کا نام تھا، مکوکس شاہ مصر و اسکندریہ. اسکندریہ اس زمانے میں ایک پوری الگ سے، ایک جیسے کہ ایک بڑا ایریا تھا، یہ مصر ایک الگ ایریا تھا، اب جو ہے وہ سب مل کر کے ایک کنٹری بن گیا ایجپٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی کرسچن تھا، اور اس کی تو ہم نے بات بھی کری تھی، یہ کون سی والی نسل سے تعلق رکھتا تھا، یہ کس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اس کی فیملی ٹری اوپر جا کر کے آن لائن anyone؟ جی، فرعون کی نسل سے تعلق رکھتا. ٹھیک ہے، فرعون جو تھا وہ قبطی تھا، قبطی. ٹھیک ہے، کوپٹک اس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ مکوکس جو بادشاہ تھا نا، یہ بھی کوپٹک تھا، اور کوپٹک کرسچن تھا. جیسے آج بھی مصر کے اندر بہت سارے کوپٹک کرسچن ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں اوور آل پاپولیشن کے مقابلے میں، لیکن ان کے کافی سارے چرچ وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس کے پاس جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھیجا تھا، اس کے پاس بھیجا تھا حضرت خاطب بن ابی بلتعہ، خاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ایک چیز مجھے یاد آئی کہ شاید پچھلی کلاس میں کسی نے پوچھا بھی تھا کہ کیا سب کو ایک ساتھ روانہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہ ہمیں کتاب میں مل گیا. آپ نے پوچھا تھا کیا؟ کسی اور نے پوچھا، قرآن نے پوچھا تھا. اچھا، تو ہاں وہ ایک کتاب میں مل گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 6 میسنجرز کو ایک دن میں روانہ کیا. ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں بھی روانہ کرتے رہے تھے، حتیٰ کہ 8th سینچری تک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے لیٹرز لے کر کے بھیجتے رہے تھے. تو مکوکس کے پاس جو ہے وہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور انہوں نے جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط اس کے حوالے کیا. اچھا، کیسے حوالے کیا؟ उनको पता लगा कि जो हातिम है ना, ये दरिया नील के अंदर जो है ना वो बैठा हुआ है कहीं पे ना, कश्ती में सफर सैर कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना देर इंतजार नहीं करूंगा। उन्होंने एक कश्ती पकड़ी और वो उसके कश्ती के करीब पहुंच गया। एक किताब में यह लिखा हुआ है, कश्ती पकड़ के उसकी कश्ती के करीब पहुंच गया, वहीं पे जाकर के उसको लेटर दे दिया। ठीक है, तो उसने जो है वो लेटर पढ़ा और हातिम रज़ियल्लाहु को फिर अपने पास बुला लिया। ठीक है, और बड़े इज्जत के साथ उसने भी ना लेटर को पढ़ाने की रसरास और हातिम रज़ियल्लाहु को फिर एक जगह पर ठहरा दिया। और फिर अपने जो शहर के वो थे ना राहिब और बड़े बड़े अमायदीन लीडर्स वगैरह जो शहर के होते हैं, तो उन सबको जमा किया और उनसे कहा कि मैं तुमसे बड़ी अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और हातिब को भी सामने बिठा लिया। तो मकूकस ने कहा, हातिब से कहा, यानी अपने सारे लीडर्स वगैरह को बिठा लिया और फिर हातिब से बात करनी शुरू करी और पूछा कि जिनका तुम खत लेकर आए हो क्या वो नबी नहीं है? तो बोलता, ये आप एक्चुअली पिछली क्लास में पढ़ चुके, क्या वो नबी नहीं है? हातिब ने कहा, हाँ वो नबी है। तो इसने क्या कहा था कि फिर उन्होंने बद्दुआ क्यों नहीं करी जब लोगों ने उनको उनके शहर से निकाल दिया था? तो हातिब रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हो ना? नबी भी मानते थे और अल्लाह के बेटा भी मानते थे, नऊज़ुबिल्लाह। ये लोग तो नबी मानते हो ना? तो उसने कहा, हाँ नबी मानते हैं। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बद्दुआ करी थी जब यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश करी थी? तो इसने जवाब दिया, हाँ तुम बड़े इंटेलिजेंट आदमी हो और जिसने तुम्हें भेजा है ना, यकीन वो भी बहुत इंटेलिजेंट। ठीक है, तो फिर उसके बाद हातिब ने इनके सामने थोड़ी सी तकरीर करी और उनको बहुत सारी बातें बताई नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, और यहूदियों ये भी बताया कि कुरैश जो है वो सबसे ज्यादा सख्त है इनके खिलाफ, और यहूद सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन है इनके, और नसारा यानी ईसाई जो है ना वो सबसे ज्यादा करीब साबित हुए। ठीक है, क्योंकि ये भी ईसाई था ना, तो दूसरे ईसाई का जिक्र करके, दूसरा ईसाई जो कि नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा करीब साबित हुआ था वो कौन था? आप थोड़ा सा ऐसे आ जाए कि आप छुपे हुए दूसरे, एक उम्र ने दूसरे को छुपाया। कौन सा ईसाई है मेरे सरासराम की बहुत करीब? नजाशी। ठीक है, तो इन्होंने नजाशी का तस्करा किया कि देखो नसारा जो है ना वो सबसे ज्यादा करीब साबित हुए हैं, नजाशी तो मुसलमान हो गया। ठीक है, नहीं, ये हेराक्लियस जो है वो मुसलमान नहीं होता ना, इस वजह से वो करीब साबित हुआ, नजाशी मुसलमान हो गया था, वो भी कृष्ण। अच्छा, फिर ना ये मकूकस ने नबी अलैहिस्सलाम को एक जवाबी खत लिखा और उसमें इसने लिखा कि ये खत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम मकूकस सरदार कब की तरफ, तिब की तरफ से, सलाम हो आप पर अम्माबाद, मैंने आपका खत पढ़ा और समझा और इसके मजमून को और इस चीज को जिसकी तरफ आपने दावत दी है समझा, यानी मुझे समझ में आ गई आपकी दावत। मैं यकीन जानता हूं कि एक नबी बाकी रह गया है, मेरा गुमान यह था कि शायद उसका खुरूज शाम में हो। ठीक है, शाम का जो एरिया है यानी बैतुल मुकद्दस का एरिया जहाँ पे 10,000 से ज्यादा अंबिया आए थे, तो वो कहता है कि मेरा गुमान यह था कि जो आखिरी नबी आएंगे ना वो भी उसी इलाके में आएंगे। मैंने आपके कासत का इकराम और एहतराम किया है और दो बांदियां और कुछ कपड़े और खच्चर हदीयतन आपकी खिदमत में भेजता हूँ, वस्सलाम। ठीक है, इस्लाम नहीं लेकर के आया लेकिन हदीये भेज दिए। हदियों में एक हदिया का तो आपको कौन थी? हजरत मारिया खिबतिया रजी अल्लाह तआला। ठीक है, इसने ना दो बांदियां जो बहुत ही इज्जत वाली उस जगह पे होती थी, इतनी इज्जत होती थी मिस्र में, खैर एक का नाम था मारिया और दूसरी का नाम था सीरीन। ठीक है, तो दो बांदियां रवाना करी इनके साथ, हातिब बिन अबी बलता के साथ, और एक खच्चर, सफेद कलर का ये खच्चर था और बहुत ही यानी इसका नाम था दुलदुल। ठीक है, तो और फिर जो है ना वो कुछ सोना चांदी वगैरह भी रवाना किया था, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े भी रवाना किए थे। तो हातिब रज़ान जो है वो इसकी ये सारे हदिये लेकर के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और ये सारा वाकया बयान किया। तो फरमाया कि मकूकस ने ना अपने मुल्क और अपने सल्तनत की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उसको भी यही डर हो गया हेराक्लियस की तरह से, कैसर की तरह से, कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मेरा मुल्क मुझसे छिन जाएगा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी भी सल्तनत जो है ना वो नहीं रहेगी। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जमाना आया ना नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों का लश्कर यहाँ पे भेजा और उन्होंने फिर मिस्र को फतह कर लिया। और मिस्र को फतह करने के बाद मिस्र के तकरीबन सारी पॉपुलेशन जो है, चाहे वो रोमन्स थे चाहे वो किप्ती थे, सारे के सारे मुसलमान हो गए, इल्ला बहुत ही थोड़े के सारे मुसलमान हो गए। अच्छा, मकूकस के साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि एक जो है ना कुरैश के आदमी थे, उनका नाम था मुगीरा बिन शुबा, ये मुगीरा बिन शेबा रजी अल्लाह ताला, बाद में मुसलमान हो गए थे। तो ये जो है ना, ये मकूकस के पास पहुंचे मक्का मुकरमा से। तो मकूकस ने इनसे पूछा कि भाई तुम लोग कैसे आए हो यहाँ पर, तुम्हारे और हमारे दरमियान तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लोग होते हैं, ठीक है, तो तुम यहाँ कैसे पहुंच गए, क्या मतलब। ये मक्का मुकरमा से चले और मिस्र पहुंचे, तो मकूकस ने कहा कि तुम्हारे और हमारे दरमियान तो ये मुसलमान होते हैं, तो उन्होंने तुम्हें कैसे आने दिया मेरे पास। शाम और
सर आए
मिस्र आए थे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, जब आप मक्का मुकरमा से नॉर्थ की तरफ सफर करते हैं ना, तो दरमियान में मदीना मुनव्वरा का एरिया पड़ता है और मुसलमानों का उस एरिया के ऊपर अच्छा खासा कब्जा हो चुका था इस वक्त, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई मिस्र आने के लिए तुम अगर लैंड रूट से मिस्र आना चाहो ना, तो उसके लिए तुम्हें नॉर्थवर्ड जाना पड़ता है और फिर वहां जाकर के फिर लेफ्ट पर तुम जाओगे, यानी वेस्टवर्ड जब तुम जाओगे ना, तो फिर तुम वादी सीना को क्रॉस करके मिस्र आ सकते हो। तो तुम इतना लंबा रास्ता क्रॉस करके कैसे आ गए। तो इसने कहा कि हम लैंड से नहीं आए, इन्होंने कहा कि हम लैंड से नहीं आए, हम तो सी रूट से आए हैं, यानी ये जो रेड सी है तो उसके ऊपर कश्ती के जरिए से पहले हबशा पहुंचे होंगे शायद, फिर हबशा से जो है वो नॉर्थ गए होंगे मिस्र, ठीक है, इथियोपिया हबशा को कहते हैं आजकल, उससे नॉर्थ गए होंगे मिस्र। तो हम इस तरह से पहुंचे। तो इसने जो है ना फिर उनसे बातचीत करनी शुरू कर और उनसे कहा कि मुझे उनके कुछ हालात बताओ, वो जो तुम्हारे मुल्क में आए हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुगीरा ने जवाब दिया कि वो एक बिल्कुल नया दीन लेकर के आए हैं हमारे पास, जो हमारे आबाई और जद्दी दीन के भी खिलाफ है, हमारे आबाओ अजदाद जो है वो उस दीन पर नहीं थे, ये एक नया दीन लेकर के आए, ठीक है। आप अगर पीछे देखते रहेंगे ना तो मैं आपको देखता हूँ, आपके लिए जरूरी आगे देखेंगे ना, क्लास रुक जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो मकूकस ने कहा कि अच्छा उनकी कौम ने ना उनके साथ क्या मामला किया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई अक्सर नौजवानों ने उनकी उनको फॉलो किया है और बाकी बूढ़ों ने जो है ना वो उनकी मुखालफत करी, ठीक है। मुगीरा बिन शोभा ने क्या जवाब दिया कि जो नौजवान होते हैं ना, नौजवान है, उन्होंने तो इनकी मदद करी है और इनके ऊपर ईमाने करके आ गए, लेकिन ज्यादातर बूढ़ों ने जो है ना उनकी मुखालफत करी, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होता था और उसके बाद भी यही होता चला गया कि बूढ़े ज्यादातर जो है वो मुखालफत करते हैं और नौजवान ही जो है वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कभी जो है वो हमारी उनके साथ लड़ाई भी हुई है और कभी हम जीत गए कभी वो जीत गए, ठीक है। तो मकूकस ने कहा कि भाई तुम वो किस तरफ बुलाते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी चीजों की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह जल्ला शान उनकी इबादत करें, किसी का शरीक न करें, बहुत सारे सवाल किए उसने और मुगीरा बिन शोभा ने उनको ठीक ठीक जवाब दिए, ठीक है। तो इसके ऊपर ना मकूकस ने उनसे कहा कि बेशक वो नबी मुरसल है, अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी हैं, तमाम आलम के लिए मबूस हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी इन्हीं बातों का हुक्म देते थे, जो कि तुम हमें बता रहे हो वही बातें ईसा अलैहिस्सलाम भी हमें हुक्म देते थे, और इससे पहले तमाम अंबिया कराम भी इन्हीं बातों की तलकीन फरमाते थे और अंजामे कार आप ही को गलबा होगा। इसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं को गलबा होगा, ये पूरी दुनिया पे गालिब आ जाएंगे, यहाँ तक कि कोई आपका मुखालिफ नहीं रहेगा और मुंतहाए बरहो बहर तक आपका दीन पहुंचेगा, यानी जहां तक जमीन है ना वहां तक इनका दीन पहुंचेगा। तो मुगीरा बिन शेबा ने जवाब दिया कि अगर सारी दुनिया भी उन पर ईमान ले आई ना, हम फिर भी उनके ऊपर ईमान नहीं ले गए, ठीक है। तो मकूकस ने कहा कि तुम लोग बेवकूफ हो, नादान हो, बेअकल हो, अच्छा ये बताओ कि उनकी फैमिली वगैरह कैसी है, नसब कैसा है। तो उसने कहा सबसे सबसे बेहतर है। बहरहाल ये सारे सवाल हुए और आखिर में जो है ना उसने, अच्छा आप पूछ रहे थे, हाँ अभी बताया था ना आपको, बाद में मुसलमान हो गए। तो इससे जो है ना फिर और भी बहुत सारे सवाल किए और आखिर में मुगीरा ने मकूकस ने कहा कि भाई ये तुम लोग सही नहीं कर रहे, ठीक है। तो मुगीरा कहते हैं कि ये सुनकर ना हम फिर महल से बाहर आ गए और हमने अपने दिलों में कहा कि ये जो शाहाने अजम है ना, यानी अरब के बाहर का जो एरिया है जिसको अजम कहते हैं, यहाँ के बादशाह इनके इतने ज्यादा तस्दीक कर रहे हैं और हम तो इनके अपने फैमिली वाले लोग हैं, और ये तो अपने घर से हमारे घर तक चल करके आते थे और हमें अपने दीन की तरह दावत देते थे, तो हम इनकी बात क्यों नहीं मानते? इतने बड़े बड़े बादशाह लोग जो है वो इनकी बात मान रहे हैं और इनकी इज्जत कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उस दिन जो है ना, मेरे दिल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पैदा हो गई और जब मैं वापस पहुंचा ना अरब, तो वहां जाकर के मैंने इस्लाम कबूल कर, ठीक है। तो मुगैरा बिन शोबा जो है ये तो मुसलमान हो गए, लेकिन मकूकस इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के बावजूद और इतने तोहफे भेजने के बावजूद इसने इस्लाम कबूल नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम के सामने आकर के इसने आपको सबमिट नहीं, अगर लेटर लिख करके भी सबमिट कर देता कि मैं आपके ऊपर मुसलमान आपके पर ईमान ला चुका हूँ, ठीक है, तो भी ये मुसलमान कहलाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ये जो था, ये कौन सा वाला बादशाह, विच नंबर, हमने अब तक किन किन का पढ़ लिया है, ये तीसरा था, कौन चौथा था, नंबर वन कौन, सबसे पहले हमने जो है ना वो कैसर रोम का पढ़ा, ठीक है, नंबर टू कौन था, हाँ किसरा था पर्शिया का, नंबर थ्री
शुक्रिया।
इथियोपिया हफ्शा का बादशाह था नजाशी, और ये था नंबर चार, ठीक है, जिस ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं ये नंबर चार बनता है इस। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो एक और पांचवा बादशाह, वो कहाँ का था, वो बहरेन का बादशाह, बहरेन सबको पता है, बहरेन यहाँ से चले आप 4 घंटे के अंदर दमाम पहुंच जाते हैं, दमाम से जो है वो आप कॉलवे को क्रॉस करें, आप बहरेन पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उस जमाने में बहरेन के अंदर भी बाकायदा लोग रहते थे और वहां पर एक बादशाह था, उसका नाम था मुंजर बिन सावा, मुंजर बिन सावा, ठीक है। तो इसके पास नबी अलैहिस्सलाम ने अला बिन हवरमी रजी अल्लाह तआला अन्हु भेजा, खत लेकर, ठीक है, अला बिन हवरमी, तो ये उसके पास पहुंचे। तो ये जो अला बिन सावा था ना, ये बहरीन का बादशाह था और इसका दीन क्या था, ये कौन से मजहब के ऊपर, इसका दीन था फायर वर्शिप, ठीक है, मजूसियत जिसको कहते हैं, जैसे कि किसरा का जो दीन था ना वो भी मजूसी थे, वो ईरान वाले, और ये भी मजूसी था, लेकिन इसके बहरीन के अंदर यहूदी भी रहते थे और ईसाई भी रहते थे, और जो है वो इसके यहाँ आतिशपरस और दूसरे आतिशपरस भी रहते थे, ठीक है। तो इसके पास जब ये हजरत अला बिन हजरमी रज़ियल्लाहु लेटर लेकर के पहुंचे नबी अलैहिस्सलाम का, तो उन्होंने पहले तो एक तकरीर करी इसके सामने और इससे कहा कि भाई तुम तो बड़े समझदार और आकिल समझे जाते हो अरब के अंदर, ठीक है, अरब था ना ये असल में, बहरीन तो अरब का बेसिकली हिस्सा है, तो तुम तो बड़े समझदार समझे जाते हो, लेकिन तुम ना आखिरत के बारे में समझदार क्यों नहीं बनते, आखिरत के बारे में, दुनिया के बारे में तुम बड़े समझदार हो, ठीक है, तुम जिस मजहब के ऊपर हो ना, ये आतिशपरस वाला मजहब जो है ये तो सबसे बुरा मजहब है, बहुत ही गंदा मजहब है ये, ठीक है, यानी जो ईसाई और यहूदी है ना ये उनसे भी गंदा मजहब है, वो तो शिर्क करते हैं, तुम लोग तो गलीज चीजें खाते भी हो, ठीक है, तुम लोग तो ऐसी ऐसी अजीबो गरीब चीजें खाते हो और तुम लोग तो बड़े अजीबो गरीब किस्म के ना, तुम्हारे घरों के मामला बहुत ही गंदे हैं, ठीक है, ये जो पारसी है ना, इनको आजकल इन लोगों को क्या कहते हैं, पारसी, ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हैं, थोड़े से होते हैं लेकिन हैं ये लोग,
हिंदू
हिंदू नहीं थे, हिंदू बहुत थे लेकिन वो हिंद में होते थे, बहरेन में नहीं होते थे, क्या
ज्यादा
मुझे नहीं पता ज्यादा गंदा कौन है, लेकिन अगर इनकी हरकतों को आप देखें ना तो हिंदू शायद कम गंदे, आप गंदगी के अंदर आप कंपटीशन करने शायद तो सही है। तो आतिशपरस जो है ना ये बहुत पारसी है हमारे यहाँ, ये इसका नाम सावा बिन मुंजर बिन सावा, मुंजर बिन सावा, ठीक। अच्छा, तो इसने जो है ना फिर इन्होंने हजरत अला बिन हजरमी ने अच्छी खासी इसके सामने तकरीर करी और नबी अलैहिस्सलाम का खत उसको दे दिया, तो मुंजिर ने फिर इसका जवाब दिया कि मैं जिस दीन पर हूं ना, मैंने उसमें गौर किया तो मैंने उस दीन को सिर्फ दुनिया के लिए पाया। फिर मैंने तुम्हारे दीन के ऊपर गौर किया, तुम्हारे दीन को मैंने दुनिया और आखिरत दोनों के लिए पाया। ठीक है, बस मुझको इस दीन के कबूल करने में कौन सी चीज माने उसे, कि जिसके कबूल करने में जिंदगी की तमन्नाएं और मौत की राहत भी हासिल होती हो। अब तक मैं उस शख्स पर ताज्जुब करता था जो दीन इस्लाम को कबूल कर लेता था, मुझे हैरत होती थी उस शख्स के ऊपर, लेकिन आज मुझे उस शख्स के ऊपर हैरत हो रही है जो दीन इस्लाम को कबूल नहीं करता। तो ये मुसलमान हो गया, ठीक है, ये हो गए मुसलमान मुंजिर बिन सावा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इसको एक लेटर लिखा बाद में और कहा कि बल्कि इसने पहले लेटर लिखा नबी अलैहिस्सलाम को, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका वाला नामा अहले बहरीन को, अच्छा नहीं, इन्होंने वो अला बिन हदरमी ने लेटर लिखा नबी अलैहिस्सलाम को वहां से, कि मैंने आपका वाला नामा अहले बहरीन को सुना दिया, बाजों ने इस्लाम पसंद किया और उसमें दाखिल हो गए और बाजों ने नापसंद किया, और इस मुल्क में ना यहूदी और मजूसी भी रहते हैं। सॉरी, बादशाह ने खुद नबी अलैहिस्सलाम को लेटर लिखा, ठीक है, और उसने लिखा कि मैंने आपका खत पढ़ा, मैं तो मुसलमान हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने आपका खत जो है ना, वो अपने लोगों को पढ़ के सुनाया ना, तो बाद उसमें मुसलमान हो गए और बाद जो है ना अपने पुराने दीन के ऊपर है, यानी फायर वर्शिपिंग के ऊपर है, और बाद जो है वो यहूदी थे, वो यहूदियत के ऊपर है, तो मैं उनका क्या करूं जिन लोगों ने बात नहीं मानी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब लिखा कि सलाम हो तुम पर, मैं तेरी तरफ इस खुदाए पाक की हम पहुंचाता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मैं तुझको अल्लाह जल्ला शानहु की याद दिलाता हूँ, इसलिए कि जो शख्स अल्लाह के साथ खैर ख्वाही और वफादारी करे वो हकीकत में अपनी जात की खैर ख्वाही करता है, और जिसने मेरे कासदों की अताअत करी और उनके हुक्म का इत्तबा किया, बस तहकीक उसने मेरी अताअत की, और जिसने उनकी खैर ख्वाही की उसने मेरी खैर ख्वाही की, मेरे कासिदों ने आकर तुम्हारी तारीफ और तौसीफ की है, मैंने तुम्हारी कौम के बारे में तुम्हारी सिफारिश कबूल की, बस वो इमलाक मुसलमानों के कब्जे में छोड़ दो जिस पर वो इस्लाम लाए हैं, और खताकारों को मैंने माफ किया, उनसे इस्लाम या तौबा कबूल करो, और जब तक तुम ठीक और दुरुस्त रहोगे तुमको हम माजूर नहीं करेंगे, और जो शख्स अपनी यहूदियत या मजूसियत पर कायम रहे तो उस पर जिजिया है। ठीक है, बेसिकली नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई जो लोग मुसलमान हो गए ना, वो तो जो कुछ उनके पास है वो उनके पास रहेगा, और जैसे वो रह रहे हैं वैसे वो रहते रहे, बस मुसलमान हो गए, शिर्क उन्होंने छोड़ दिया है, कलमा कबूल कर दिया। लेकिन जो लोग मुसलमान नहीं हुए, यहूदी और जो मजूसी लोग हैं, तो उनके ऊपर जो है ना वो एक टैक्स लगाया जाए। ठीक है, टैक्स क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जिजिया, जिजिया टैक्स। ठीक है, तो उनसे एक सर्टन पैसे लिए जाते हैं जिसके बदले में मुसलमान जो है फिर उनकी हर तरह से हिफाजत करते। ठीक है, तो बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस तरह से जवाब दे दिया।
अच्छा
ये सहाबी थे, इनकी मुलाकात कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, तो ये भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे नहीं, तो जिस तरह नजाशी जो है वो पहुंचा नहीं था, तो उसके भी सहाबियत है नहीं, उसी तरह इनके भी सहाबियत है। अच्छा, ये हो गया पांचवा बादशाह। तो ये मुसलमान हो गया, नजाशी मुसलमान हो गया, मुंजर बिन सावा मुसलमान हो गया, कैसर मुसलमान नहीं हुआ, किसरा मुसलमान नहीं हुआ, मकूकस मुसलमान नहीं, पांच में से दो। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं छठे बादशाह की तरफ, शाहे उमान। उमान पता है कहाँ पर है? हाँ, तो इतनी तेजी से खड़ा कर, हाथ खड़े करने के बाद आप
तो
है?
सही
जहां पे शहीद हो गए थे वो वहां पर उमान है। अच्छा, उमान जो है ना, ये जी यमन के बराबर में है, ठीक है, यानी जो सऊदी अरब है ना, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, तो जो ये सरजमीन अरब है, अरेबियन पेनिनसुला, तो इसमें सऊदी अरब के अलावा और कौन कौन से कंट्री, कोई बताएगा? जी सर, इसमें बहरीन भी शामिल है जो कि बहुत ही छोटा सा है, और क्या है इसमें, यूएई है, मुत्तहदा अरब अमारात आजकल इसको यूएई कहते हैं, यूएई के अंदर दुबई, शारजा और बहुत सारे हैं, कतर है, बहरीन है, और कोई कुवैत है उसके अंदर, राइट? प्रत्येक जंगल है जवाब, और ओमान एंड यमन, ठीक है। अच्छा, इन कंट्रीज के अंदर सऊदी अरब सबसे ज्यादा बड़ा है, और उसके बाद जो है वो शायद यमन है दूसरे नंबर पर, और फिर उसके बाद ओमान है। ओमान बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप यहाँ से अगर आप पाकिस्तान जा रहे हो ना, या इंडिया, पाकिस्तान के पीछे फिर इंडिया है, तो सबसे कॉर्नर के अंदर जो मुल्क है ना वो है ओमान, ठीक है। सऊदी अरब यानी अरेबियन पेनिनसुला के बिल्कुल साउथ ईस्ट कॉर्नर पे वो है ओमान जी।
सीरिया
सीरिया अरब के अंदर नहीं है, ठीक है। सीरिया तो शाम का है, चला है। जॉर्डन ऑल्सो, जॉर्डन का कुछ हिस्सा तो कह सकते होंगे, लेकिन जॉर्डन की जो है ना वो सरजमीन शाम का हिस्सा, ठीक है। टर्की का साउथ और पूरा का पूरा सीरिया, पूरा का पूरा फलस्तीन और जॉर्डन, ये सब का सब जो है वो सरजमीन शाम कह रहा है, और सरजमीन अरब जो है ना वो ये है जो कि अरेबियन जजीरा नुमा अरब कहते हैं। यूएई, ओमान, इराक, ईरान, कुवैत। इराक ईरान कहाँ से आ गया इसके अंदर? इराक ईरान नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो ओमान का ये जो बादशाह था, इसके नाम नबी अलैहिस्सलाम ने खत लिखा और ये भेजा 8 हिजरी में, ज़ी क़ादा 8 हिजरी, यानी 7 हिजरी पूरा का पूरा गुजर गया, और 8वां हिजरी शुरू हो गया, और 8वीं हिजरी का जो सेकेंड लास्ट मंथ होता है, 11वां महीना वो होता है ना ज़ी क़ादा, तो उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिख दे करके ओमान के बादशाह के पास भेजा, ठीक है। अच्छा, वहां पर जो बादशाह था वो, उसका नाम था जलंदी, जलंदी, लेकिन वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसने अपनी बादशाहत जो है ना वो अपने दो बेटों के हवाले कर दी। एक बेटा उनमें से बड़ा था, उसका नाम था जीफर, जीफर, ठीक है, और उसका छोटा भाई जो था उसका नाम था अब्द, ठीक है। तो जीफर जो था ना वो प्रैक्टिकली बादशाहत कर रहा था, और अब जो है वो उसको सपोर्ट करता था जी।
अच्छा,
खत कौन लेकर के गया, कौन लिखता था? कातिब का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के जो कातिब होते थे वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी लिखना आता था, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी लिखना आता था, ठीक है। और बाद में जाकर के हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वो मदीना मुनव्वरा आ गए उनको भी लिखना आता था, तो इस तरह के ये लोग जो है ना फिर कातिब कहलाते थे नबी अलैहिस्सलाम जी।
अच्छा
किसके? बहरीन के बादशाह का नाम मुंजर बिन सावा। अच्छा, तो ये जो है ना वो लेटर लेकर के गए, तो पहले जो है ना ये छोटे भाई के पास पहुंचे जिसका नाम था अब, ठीक है, और अब को जो है वो खत दिया, तो अब ने कहा कि भाई असल में जो मेरा बड़ा भाई है ना वो बादशाह इस वक्त है, तो उसको जो है ना तुम ये ले जा करके खत, ठीक है, और मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा दूंगा। फिर उसके बाद अब ने इनसे पूछा, अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु से, ये जिनका तुम मेरे पास खत लेकर के आए हो तो ये किस चीज की तरफ दावत देते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देते हैं, और कहते हैं कि बुत परस्ती को छोड़ दो, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल, ठीक है। तो आपने जवाब दिया कि अमर इब्न लास, तुम अपनी कौम के ना सरदार के बेटे हो, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप ने क्या किया इनकी दावत के ऊपर? तो अमर इब्न आस ने जवाब दिया कि मेरे बाप का जो है ना वो तो इंतकाल हो गया, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बाप भी मुसलमान हो जाता लेकिन उसका इंतकाल हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने पूछा कि तुम कब मुसलमान हो, ठीक है। तो अमर इब्न आस ने जवाब दिया कि छोटा भाई ये सारे सवाल कर रहा था आप जिसका, ठीक है, जीफर के पास अभी ये पहुंचे नहीं। तो अमर इब्ने आस ने जवाब दिया, अमर इब्ने आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सन इन लॉ,
मामू
नहीं, ये तो नबी क्या थे, मामू,
मामू
नहीं, मामू तो नहीं थे, लेकिन सन इन लॉ का नाम था अबुल आस, तो ये अमर इब्न आस रहता। अच्छा, तो इसने पूछा कि तुम कब मुसलमान है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बस चंद दिन पहले ही मुसलमान हुआ हूँ। कैसे मुसलमान हुए? उसने कहा कि मैं जो है ना हबशा गया हुआ था नजाशी के पास, तो नजाशी के हाथों पर मैं मुसलमान, ठीक है, नजाशी ने मुझे कलमा पढ़ाया और मैं उसके पास जाकर के मुसलमान हुआ। तो ये अमर इब्न आस रदान जो है ना, ये एक बड़े स्पेशल साहब। कैसे के बल्कि उस सवाल का जवाब भी कंफर्म हो गया कि ये नजाशी के हाथों में। हाँ,
अच्छा
ये एक ताबे, ये एक सहाबी थे जो कि ताबेई के हाथ में मुसलमान, ठीक है ना। और वो बात भी कंफर्म जो पिछली दफा हम बात कर रहे थे ना कि नजाशी तो सहाबी थे कि नहीं थे, बात तो खैर हो गई थी कि वो सहाबी नहीं थे, लेकिन किताब से भी ये बात कंफर्म हो गई कि वो ताबेई बने, ठीक है। और आपके जो अभी अभी जो सवाल था उसका भी जवाब हो गया, ताबेई बने, मुंजर बिन सहाबा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने पूछा कि नजाशी के मुसलमान होने के बाद उसकी कौम ने उसके साथ क्या किया, तो अमर इब्ने आस ने जवाब दिया कि उसकी कौम ने भी उसकी इत्तबा करी, ठीक है। बाद में जो है ना वो बहुत सारे लोग हबशा के अंदर मुसलमान हो गए। बहरहाल, तो ये सारी जो है डिस्कशन हो गई, और इसके बाद जो है वो अमर इब्ने आस जो है जीफर के पास गए, और जीफर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत दिया। जीफर ने भी खत पढ़ा और कहा कि अच्छा मैं सोच करके बताता हूँ। और कुछ दिन के बाद जो है ना ये और इसका भाई बहुत सारे अमान के लोगों के साथ, ठीक है, तो ये तीसरे थे कि जो के खत के नतीजे में मुसलमान हो गए, और जो लोग अमान के अंदर मुसलमान नहीं हुए तो उनके ऊपर भी जिजिया टैक्स जो है वो नाफिज कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये छठे बादशाह का किस्सा जी है। बाप को भी नबी अलैहिस्सलाम ने खत तो लिखा था लेकिन उसके मुसलमान होने का जिक्र नहीं है। अच्छा नहीं, हाँ, बाप ही मुसलमान हो गया, ठीक है। जलंधी जो है ना ये भी मुसलमान हो गया, ये जुलंधी जो जुलंदी, इसके दोनों बेटे और अमान के बहुत सारे लोग जो है मुसलमान, होता है ये बात, ठीक।
अभी
पहले जिन्होंने खत दिया था, नहीं, नजाशी मुसलमान नहीं हुआ, नजाशी तो पहले मुसलमान हुआ था। अमर इब्ने आस नजाशी के हाथ पर मुसलमान, ये हम बात कर रहे
अमर
थे। अमर इब्ने आस,
इब्ने
नहीं, मैंने ये नहीं, अमर इब्ने आस के ताबे, नजाशी जो है वो ताबेई था, ठीक है, क्योंकि नजाशी ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा नहीं, तो इस वजह से वो सहाबी नहीं बन सका। तो जिसने सहाबी को देखा वो क्या बनते हैं? ताबी बनते हैं, ठीक है, तो नजाशी जो है वो ताबी ही बनते। लेकिन अमर इब्ने आस मुसलमान तो हुए नजाशी के पास जाकर के, लेकिन फिर वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए, तो यहाँ पे आने के बाद उनको सहाबी, ठीक, और नजाशी वहीं पर आ, वो तो नहीं आने के अलैहिस्सलाम के पास, तो वो ताबी ही रहा, ठीक है। अच्छा, इनके बाद दो और रह गए, टाइम देखते हैं कितना रह गया, अभी है जी क्या, अकूकस। अच्छा, अब सेकंड लास्ट यानी नंबर 7 बादशाह जिसके पास नबी रसूल सलाम ने खत भेजा, ये जो था वो हमारा पड़ोसी जहाँ पे हम रहते हैं आप लोग, रियाद, तो रियाद से करीब कौन सी जगह है? यमामा, सही है, यमामा। तो यमामा को जो है ना, ये सरदार था रईस यमामा, हौजा बिन अली, हौजा बिन अली। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने सलील बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खत दे करके रवाना किया। तो सलील जो है वो उनके पास पहुंच उसके पास पहुंचे और हौजा से कहा कि ए हौजा, तुमको तो पुरानी और बोसीदा हड्डियों ने सरदार बना दिया है, यानी तुम जो है ना सरदार बने हुए हो क्योंकि तुम इतने बूढ़े हो गए हो। आप जो है वो तुम ट्राइबल लीडर, पहले बात हुई थी ना आपकी, आपने भी कुछ लिखा था उसके ऊपर, आप पाकिस्तान में थे शायद दुबई में, ये जो बूढ़े हो जाते हैं वो जो है वो सरदार बन जाते हैं, ठीक है, ट्राइबल लीडर्स का ये मामला होता है। इसी वजह से ट्राइबल लीडर जो है वो कोई नौजवान नहीं होता, तो तुम तो इस वजह से सरदार बने हो क्योंकि तुम तो इतने बूढ़े हो गए। और हकीकत में तो सरदार वो है कि जो ईमान से मुतमत्ता हो, यानी जिसके पास ईमान आ जाए ना, असल में तो वो सरदार होता है, और जिसने तकवा इख्तियार कर लिया। मैं तुमको एक बेहतरीन शय का हुक्म करता हूँ और एक बदतरीन शय से तुमको मना करता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत का तुम्हें हुक्म करता हूँ और शैतान की इबादत से तुम्हें मना करता हूँ। अगर तुम इस बात को कबूल कर लोगे ना, तो तुम्हारी सारी उम्मीदें जो है ना वो पूरी हो जाएंगी और तुम खौफ से अमन में आ जाओ, ठीक है। और अगर तुम इस बात का इनकार करते हो तो कयामत का हौलनाक मंजर तुम्हारे और तुम्हारे दरमियान इस पर्दे को उठा देगा, यानी जब तुम मरोगे कयामत के दिन पहुंचोगे तो तुम्हारे सामने हकीकत खुल जाएगी। मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ कि तुम अभी मेरी बात, ठीक है। तो हौजा ने जवाब दिया कि मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं जरा सोच, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना नबी अलैहिस्सलाम का, अच्छा, खत दे दिया और फिर बात कर ली, और उसने कहा कि अच्छा मुझे सोचने की मोहलत हो। इसने जो है ना फिर थोड़ा सोचने के बाद नबी अलैहिस्सलाम को ये जवाब लिखकर भेजा कि जिस चीज की तरफ आप बुलाते हैं ना वो तो बड़ी ही अच्छी चीज है, ठीक है, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अरब जो है ना वो मुझसे बड़ा डरते हैं, मेरे रोब और दबदबा जो है ना वो अरब के ऊपर बहुत है, वो मुझसे डरते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे है ना थोड़ा सा इख्तियार दे दीजिए, यानी आप मुझे जो है ना वो गवर्नर शवर्नर बना दीजिए यहाँ, तो फिर मैं आपका इतबा करूँ, ठीक है, फिर मैं मुसलमान हूँ। इसने कंडीशन लगा दी अपने इस्लाम कि आप मुझे कुछ इख्तियार दे दीजिए, गोया कि आप मुझे गवर्नर बना दिए यहाँ का, फिर मैं मुसलमान हो जाऊंगा। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने उसको ये ऑफर नहीं करी, ठीक है, अगर ऑफर करी होती ये मुसलमान हो जाता, नबी अलैहिस्सलाम जाहिर है बात के ऊपर कायम रहते, लेकिन इसने जो है ना वो खुद डिमांड करी कि पहले आप मुझे गवर्नर बनाए, इख्तियार दें, फिर मैं आपकी इतबा कर दूंगा, ठीक है। तो ये लेटर जब नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा इसने हदीये तोहफे भी भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, लेकिन नबी अलैहि सल्लम ने इसका खत पढ़ करके यानी सुन करके भी फरमाया कि खुदा की कसम अगर ये मुझसे एक बालिश भर भी जमीन मांगेगा ना, मैं उसको वो भी नहीं दूंगा, ठीक है, मैं इसको नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। और ये भी हलाक हुआ, इसका मुल्क भी हलाक, ये नबी अलैहि सल्लम ने इसके बारे में पेशेंट गोई फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का से वापस हुए तो जिब्राइल अमीन ने आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके मरने की खबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक खबर सुनाकर फरमाया कि यमामा में अनकरीब एक कज़्ज़ाब नमूदार हो, यानी ये तो मर गया हौजा, ठीक है, लेकिन इसके बाद एक कज़्ज़ाब नमूदार होगा जो मेरे दुनिया से जाने के बाद नबूवत का दावा करेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, यमामा ही के इलाके से फिर वो सैलमा कज़्ज़ाब जो है ना वो निकला। जी आपको क्या पूछते हैं? हाँ वो सैलमा कज़्ज़ाब जो है फिर गुमराह के मामले पे आप जी।
सहाबी
सहाबी का नाम क्या था जो कि इनके सलील, सलील रज़ी अल्लाह तआला बिन अमर, सलील बिन अमर, ये गए थे यमामा के सरदार के पास हौजा बिन अली, ठीक है। तो इसका भी वैसे ही मामला हुआ जैसे कि मकूकस का मामला था और जो है कैसर का था, ठीक है, ये अदब वाली तो बात इसने करी, लेकिन इसने जो है ना वो अपनी वही सल्तनत का मामला ज्यादा प्रेफरेंस जो है उसने अपनी हुकूमत को दी, अपनी सल्तनत को दी, और नबी अलैहिस्सलाम से भी ये डिमांड की कि आप मुझे सल्तनत दे देना तो मैं आपके पास। अच्छा आखिरी जो था वो था अमीर दमिश्क हारिस गस्सानी, हारिस गस्सानी, गस्सान का पहनेवार। गस्सान का जिक्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस पे जाते काम थोड़ा गस्सानियों का, गस्सान का। ठीक है, ये गस्सान कहाँ पे था, गस्सान का एरिया, गस्सान का एरिया कहाँ पर है जी? आप बता रहे कुछ है बता किससे? गस्सानियों का तस्कर हमने कहाँ पढ़ा था? थोड़ा सा पढ़ा था बस, बहुत ज्यादा नहीं। गस्सान वालों का हमने तस्करा पढ़ा था गजवे खंदक में, गजवे खंदक। ठीक है, जब यहूदी जो है वो मदीना मुनव्वरा से गए थे मक्का मुकरमा, और मक्का मुकरमा में जाकर के उन्होंने मुशरिकीन से एग्रीमेंट किया था, काबतुल्ला के गिलाफ को पकड़ करके वादे किए थे कि हम जो है वो इकट्ठे होकर के ना मदीना मुनव्वरा के ऊपर चढ़ाई करेंगे, मोहम्मद के ऊपर, रसूलुल्लाह से। और फिर उसके बाद जो ये यहूदी सरदार थे ना, ये गस्सान भी गए। गस्सान एक बहुत बड़ा कबीला था, और ये लोग क्रिश्चियंस होते थे। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ है, शाम और अरब के दरमियान का जो एरिया है ना, ये गस्सान का एरिया। ठीक है, शाम तो ये पहले फलस्तीन हो गया, जॉर्डन, सीरिया, फलस्तीन। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऊपर है, और नीचे जो है वो अरब का एरिया है। इनके दरमियान का जो एरिया ना, ये बॉर्डर टाउन जो है, बॉर्डर के, ये गस्सान कहलाता है। तो इसका जो बादशाह था उसका नाम था फारिस वसान, वसान का नाम। ठीक है, और ये भी क्रिश्चियंस थे, और ये कैसर का एक गवर्नर भी था। कैसर जो है वो असल बादशाह था, हेराक्लेस। ठीक है, और ये उसके जो है ना वो एक गवर्नर के तौर पे इस एरिया को रूल करता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने शुजा बिन वहब असदी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये खत दे करके भेजा। शुजा, शुजा भाई का तो नाम आपको याद रहेगा, शुजा भाई। क्या तो शुजा भाई, अरे परेशान हो रहे हैं, अगर आपको जानते नहीं तो खैर। तो शुजा दत्ता उनको भेजा वहां। अच्छा, जब ये वहां पे पहुंचे ना, तो ये चूंकि वही टाइम था जिसमें कि नबी अलैहिस्सलाम ने कैसर भी खत को भी खत भेजा था, तो किसी को याद है कि जब हजरत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु कैसर के पास खत लेकर के पहुंचे थे, तो कैसर कहाँ था? इंडिया पहुंचा था। ईरान इराक की जंग हुई, ईरान के इराक नहीं, ईरान और रोम की जंग हुई थी। ठीक है, और रोम को जो है फतह हुई थी, तो उस वजह से वो हमस के शहर से पैदल चल करके पिलग्रिमेज करने के लिए बैतुल मुकद्दस गया हुआ। ठीक है, तो ये भी जो है ना फिर खत लेकर के बैतुल मुकद्दस पहुंचे। सही है, हजरत दहिया कल्बी। तो उसी वक्त जो है ये हजरत शुजा रज़ियल्लाहु अन्हु वो गस्सान पहुंचे खत लेकर के। तो वहां पे जाकर के ना पता चला कि अच्छा, गस्सान के अंदर जो है ये शहर हमस था, तो उसको उनको वहां पे जाकर पता चला कि जी जो जो हारिस गस्सानी है ना, वो तो कैसर रोम के लिए ना सामान जियाफत मुहैया करने में मजबूर। ठीक है, यानी खाने पीने का सामान, उसके नाश्ते पानी का सामान है ना, सारी अरेंजमेंट करने में वो तो बहुत बिजी है, सर वो अभी आपसे नहीं। तो ये थोड़ा वेट करने लगे, और जो इसका दरबान था ना, यानी इसके जो महल का जो बॉडीगार्ड था, उनका नाम था मुर्रा या मुर्री, मर्री या मुर्री नाम। ठीक है, तो ये मुर्री के पास गए और उनको बताया कि भाई मैं वो खत दे करके आया हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का, और तुम्हारा जो बादशाह है ना हारिस, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, मैं क्या करूँ? तो मुर्री ने उसे कहा कि मुझे बताओ तुम किसका खत दे करके आए हो, और वो कौन है और क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना वो मुर्री को जो है, जो कि दरबान था हारिस बॉडी गार्ड उसके महल का, उनको जब सारी चीजें बतानी शुरू कर दी, तो मुर्री जो है ना वो इनकी बातें सुनता जाता था और रोता जाता। उसने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा कि मैंने ना इंजील पढ़ी हुई है, और तुम जो बातें अपने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हो, वो सारी चीजें मैं इंजील में पढ़ चुका हूँ, वो यकीनन अल्लाह के नबी। ठीक है। तो इसने कहा कि मैं तो उनके ऊपर ईमान लेकर के आता हूँ, उनकी तस्दीक करता हूँ, अलबत्ता मुझे अंदेशा है कि हारिस ना जब मालूम होगा उसको तो वो मुझे कत्ल कर डालेगा, ठीक है। लेकिन उसने जो है वो इनकी बड़ी मेहमान नवाजी करी, हजरत शुजा बिन वहब असदी रजा, बड़ी अच्छी से मेहमान नवाजी वगैरह करी और उनको वहां पे ठहराया। तो थोड़े दिन के बाद जो है ना वो हारिस भी वापस आ गया, जब वो फारिग हो गया होगा कैसर की मेहमान था वाली वगैरह से, तो वो भी वापस आ गया। तो इन्होंने जो है ना वो हारिस को नबी अलैहिस्सलाम का खत पेश किया, तो हारिस को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा ये कौन और इनकी कैसे मजाल हुई कि जो है ना ये मुझे जो है वो इस तरीके से कहें और कहें कि जी आपका तुम्हारा मुल्क मैं छीन लूंगा, और ये कौन होते हैं ना वो ये सारी बातें कहने वाले। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने नबी अलैहिस्सलाम के खत को जो है ना वो एक तरफ फेंक दिया और कहने लगा कि मैं खुद जो है ना जाता हूँ और मैं उनसे निपटूंगा जाकर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत करीब ही था, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाए मदीना मुनव्वरा से तो ये गसान का इलाका आ जाता है। तो इसने ना घोड़े वोड़े सारे तैयार करने शुरू कर दिए और साथ साथ इसने एक लेटर जो है ना वो कैसर रोम को भी भेजा, जो कि असल बादशाह था इनके मुल्क का, असल बादशाह तो वही था जी। सहाबी को कुछ कहा नहीं, ठीक है, बस सहाबी जो थे ना वो भी वहीं पर थे, तो इसने सारी प्लानिंग करनी शुरू कर दी और कैसर रोम को जो है वो अपना एक खत भेज दिया। कैसर को जब इसका खत मिला ना तो कैसर ने फौरन जवाब दिया फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ दो, तुम उनसे जाकर के मत लड़ो, बल्कि तुम इनके खत की जो है ना वो इज्जत करो, क्योंकि कैसर जो है वो बात समझ चुका था ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही है, ठीक है। तो इसने जो है ना फिर ये सुन करके अपना इरादा तर्क कर दिया और हारिस ने अपना इरादा तर्क कर दिया और फिर शुजा रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है इसने 100 मिसकाल जो है ना वो सोना हदिया किया नबी अलैहिस्सलाम के, और भी उसके अलावा कुछ हदिये वगैरह किए और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सलाम पहुंचा दे, ठीक है, लेकिन मुसलमान नहीं, अगर आप लोग ये पूछ रहे थे तो वो मुसलमान नहीं जी। हाँ तो ये ट्राइब्स है ना, ट्राइब के नाम तो उन्होंने मेंटेन किया, वसानी यहाँ पे होते हैं, कहतानी होते हैं यार। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम के पास जब वो वापस आए तो आपसे फरमाया कि उसका मुल्क खराब हो गया, यानी उसका मुल्क बात नहीं बचेगा बस जी। क्या
मुर्री को मारा था कि नहीं?
इसको मारा था?
मुर्री
मुर्री को मारा था कि नहीं? मुर्री ने, लगता यह है कि उसने अपने इस्लाम का तो बताया नहीं, ठीक है, दरबान मुर्री जो था तो अपने इस्लाम को पोशीदा रखा होगा लेकिन मुसलमान तो हो गए। इसको कम कर थोड़ी देर, कितने हो गए अभी टोटल? 8, ठीक है, तो 8 में से कितने मुसलमान हुए? 4 मुसलमान। ये लोग भी मुसलमान नहीं हुए, यमामा वाला भी मुसलमान नहीं हुआ, और जो उससे पहले जो अम्मान वाला था वो मुसलमान हो गया, मुंजर बिन सावा मुसलमान हो गए, ठीक है, और जो है नजाशी मुसलमान हो गए, तो 4 बन गए राइट, और बाकी जो है वो मुसलमान नहीं हुए, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से भी उन्होंने सही जवाब दिया। ये मामलात कब हुए थे, किस वाकये के बाद हुए थे? मेजर वाकया गजवा
सुधर गया
खंदक के बाद, ठीक है, लेकिन गजवा खंदक के बाद एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ जी जी बता दें, सुलह हुदैबिया, ठीक है, सुलह हुदैबिया के बाद जब वॉर वगैरह जो है वो रुक गई थी ना और एक अमन क्रिएट हो गया था, तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इस तरीके से खत लिख करके फिर बादशाहों को भेजने शुरू किया, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो गया था कि जिसके बाद जो है ना वो इस्लाम बहुत तेजी से फैला था, इवन वो बादशाह भी जो कि मुसलमान नहीं हुए थे वहां तक भी पैगाम पहुंच गया था और उनके इलाकों के लोग जो है वो मुसलमान होने शुरू हो गए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस्लाम को इससे फायदा हुआ। और इसके बाद जो है वो जो एक बड़ा वाकया हम पढ़ेंगे 7वीं हिजरी का, मुहर्रमुल हराम, ठीक है, वो है गजवे खैबर। का कस्बा।
और क्या तुम जितने भी बादशाहों की बात हुई है, मुझे किसी के कासिम का कत्ल जायज होता है?
कासिद का कत्ल जायज होता है? कासिद का कत्ल तो जायज कभी भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। अगरचे के बहुत सारे लोगों ने कासिदों को कत्ल किया, लेकिन ये इन कासिदों में से किसी को कत्ल नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा जो है वो मिट्टी उठा करके जो है ना वो सर के ऊपर रखी गई, उससे ज्यादा कुछ। कोई वैसे सवाल वगैरह पूछना है किसी ने? अच्छा, ये एक अच्छा मौका है तो उसके ऊपर हम एक अनाउंसमेंट करते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। तो वो एक मेजर बड़ी अनाउंसमेंट है, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी सुन लें और जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको तो शायद पहले से पता होगा कि जो नेक्स्ट वीकेंड है ना, नेक्स्ट सैटरडे को जो इंशाल्लाह क्लासेस होंगी सीरत की भी और मुस्लिम आवर हीरोज वाली क्लासेस भी, तो उसमें जरा शॉर्टर क्लास होगी। ठीक है, जैसे अभी 45 मिनट्स की क्लास होती है तो उसमें आधे घंटे की जो है वो सीरत क्लास भी होगी और आधे घंटे की फिर आवर हीरोज क्लास होगी। और फिर जो हमारे पास टाइम बचेगा ना, उसमें हम थोड़ा सा और टाइम ऐड करके हम उसके अंदर एक क्विज करेंगे। ठीक है, क्विज कंपटीशन होगा, सॉर्ट ऑफ कंपटीशन नहीं होगा एग्जैक्टली, लेकिन क्विजेस होंगे। ठीक है, तो उसमें जो है वो ऑनलाइन वालों से भी सवाल किए जाएंगे और जो ऑन साइट मौजूद होते हैं उनसे भी मुख्तलिफ सवाल करेंगे। ठीक है, ऑन साइट वालों को हमने जरा पहले से बताया हुआ था क्विज की तैयारी वगैरह के लिए, तो वो जरा अपनी पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे, उम्मीद है कुछ कर रहे होंगे। किसी ने शुरू करी है क्विज तैयारी? अच्छा माशाल्लाह। तो जो ऑनलाइन वाले हैं उनको हम अभी बता रहे हैं, उनके पास कम टाइम था, कम टाइम होगा तैयारी के लिए, तो उनके लिए हमने ये सोचा था, यानी हम आपस में जो मशवरा कर रहे थे टीचर्स वगैरह, तो वो ये सोच रहे थे कि जो ऑनलाइन है ना तो उनको हम ओपन बुक, ठीक है, यानी वो नोट्स हम उनको भेज देंगे ग्रुप के ऊपर। आप सब अपने पेरेंट्स से, जो जिन जिन के पेरेंट्स के पास व्हाट्सएप है तो वो अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, और जो खुद व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो खुद ही उस ग्रुप के ऊपर अगर ज्वाइन है तो वो देख लीजिएगा कि उसके ऊपर हमने 5 फाइल्स हम भेजेंगे आप। ठीक है, तो एक फाइल तो होगी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोट्स की। ठीक है, हमने क्विज के लिए सीरत नबी में से सिर्फ एक वाकया सेलेक्ट किया है, गजवाए खंदक का वाकया। ठीक है, उसके ऊपर हुई थी टोटल 4 क्लासेस, 4। ठीक है, तो उन 4 क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स वो आप लोग अगर सुन लें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वरना अगर रिकॉर्डिंग्स पूरी नहीं भी सुन सके ना, तो एक फाइल हम ग्रुप के ऊपर भेजेंगे जो कि उन 4 क्लासेस के नोट्स के ऊपर, उसके अंदर सारे नोट्स होंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तैयारी तो आप नोट्स से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से तैयारी हो सकेगी। ठीक है, सीरत नबी के लिए एक फाइल ग्रुप के ऊपर भेजी जाएगी, और जो आवर हीरोज हैं उनके लिए 4 फाइल्स हैं। ठीक है, एक एक पेज की हैं, एक एक या डेढ़ डेढ़ पेज की फाइल्स हैं, उनमें 4 पर्सनैलिटीज हैं। किसी को याद है करके वो कौन सी पर्सनैलिटीज हैं?
उमर
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हजरत रहमतुल्लाह अलैह, और कौन थे? मूसा बिन नसीर, तारिक बिन जियाद और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह और मूसा बिन नसीर, या कुछ लोग नुसैर भी बोलते हैं, और तारिक बिन जियाद रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो ये 4 पर्सनैलिटीज हैं कि जिनके ऊपर क्विज होगा, और सीरत नबी में से सिर्फ गजवा खंदक के ऊपर। तो
ठीक
अगली अगले हफ्ते इंशाल्लाह थोड़ी सी क्लास भी होगी और फिर बाकी जो है वो क्विज। जी, क्या पूछ रहे हैं? बैटल ऑफ ट्रेंच का भी है? नहीं, वो जो 5वीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, सीरत की जो पीडीएफ है। ठीक है, 4 तो हैं पर्सनालिटीज की, मुस्लिम हीरोज की। ठीक है, 5वीं जो है वो गजवे खंदक, बैटल ऑफ ट्रेंच की। ठीक है, उसमें 4 क्लासेस के नोट्स हैं, जो 4 क्लासेस हमने गजवे खंदक के ऊपर करी थी। ठीक है, तो उस में से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बस यानी उसका कोर्स यही है बस। अच्छा, इन्होंने कुछ पूछा है, नोट्स आर इन इंग्लिश और उर्दू? नोट्स आर इन इंग्लिश। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनको अभी उर्दू पढ़नी नहीं आती है, अगर जो सीखना सबको चाहिए, लेकिन इंग्लिश तो माशाल्लाह सबको पढ़नी आती है, तो चलें इस वजह से हमने आपके लिए आसानी करी कि इंग्लिश के अंदर ही नोट्स, नोट बनते भी वैसे इंग्लिश के अंदर ही है। जी,
4 5 वर्ष आए थे वो तो जंगे
नूरुद्दीन जंगी, अगर थे भी ना वो डिलीट कर दी थी। पहले असल में हमने आपको 8 फाइल्स भेजे थे, फिर हमने तो फैसला किया कि नहीं 8 बहुत ज्यादा हो जाएंगे आप लोगों के लिए तैयारी करने के लिए, तो 4 को हमने डिलीट कर दिया था और सिर्फ 4 रह गई। तो नूरुद्दीन रंगी लग नहीं है, शायद आपको पहले वाला याद होगा। और फिर इस तरह हमें होगा और कुछ जी
जी सवाल
जी जरूर कहिए।
जिनके वाले तो उनके नाम थे, तो उनके वाले नाम तो खास तौर पे हजरत अकरम ने छोटी, तो उसमें एक तो साथ के उनके वाले को भी जो है साथ उनके चुनाव उनके वाले के साथ नाम को कहा तो क्या हम सिर्फ उनका नाम अगर दे के रिजल्ट आता हम लगा दें तो वो ज्यादा
मुझे पता ही क्यों सवाल कर रहे हैं, इस वजह से मुझे हंसी आ रही है। इनका एक दूसरा नाम दिया वो पता, इस वजह से सवाल कर रहे हैं। तो ले सकते हैं, लेकिन अरबों में एक तो ये कि सहाबा कराम की जो जनरेशन है तो उनमें से तो अक्सर का ऐसे ही मामला था कि उनके पेरेंट्स जो है मुसलमान नहीं थे, ठीक है, तो बाज नहीं बल्कि मेजोरिटी साहब ऐसे ही थे कि उनके पेरेंट्स मुसलमान नहीं हुए। अच्छा, तो अब आप जो है वो मैं बाज तो नहीं कह सकते, मेजोरिटी था। दूसरा ये कि अरबों के अंदर ये तरीका है, पहले भी ऐसे ही था और आज भी अक्सर ऐसे ही करते हैं कि वो बिन करके जो है ना वो अपने बाप का नाम साथ लगाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत अच्छा, कुछ सहाबा के नाम एक जैसे भी थे, ठीक है, सेम जैसे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन उमर रतान, अब्दुल्ला बिन अब्बास रतान, अब्दुल्ला बिन मसूद रतान, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रतान, ठीक है। तो अब उसमें जब अगर आप बाप का नाम ही लगाएंगे तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कौन सा वाला अब्दुल्ला की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरा ये कि जो रजी अल्लाह तआला लगाया जाता है ना, तो कुछ लोग तो करते हैं कि अकरमा रजी अल्लाह तआला बिन अबी जहल, ठीक है, तो वो रजी अल्लाह तआला पहले लगा देते हैं और अबू जहल का नाम जो है वो रजी अल्लाह के बगैर लगाएंगे। लेकिन अगर कोई आखिर में भी लगाते हैं ना, तो उसमें भी ये अज्यूम्ड यही होता है कि मुराद जो है वो असल बंदे की बात हो रही है, उनके बाप की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो रजी अल्लाह तआला जो है वो अकरमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अबू जहल के लिए जाहिर है इस्तेमाल। तो ये तो बिल्कुल ही बदी ही बात है, बिल्कुल ऑब्वियस क्लियर बात है। जी
अब मैं भी क्लास में है कि जो आर्टों की बात मिलने लगी है तो सबसे चार चार लोग मुसलमान हो गए थे ना, तो कौन सा है तीन तो कौन सा मुसलमान
कैलकुलेशन में हो सकता है गलती भी होगी, आपको मैं 4 बोला तो मैंने भी 4 बोला। देख लेते हैं इसके अंदर में, 8वां जो था वो दमिश्क का हारिस बसाई था मुसलमान नहीं हुआ, यमामा का हौजा था वो मुसलमान नहीं हुआ, छठा जो था वो अम्मान के थे सारे बाप और दोनों बेटे और सारे लोग, वो अम्मान वाले मुसलमान हो गए, ठीक है। तो नंबर 1 मुंजिर बिन सावा, नंबर 5 था वो मुसलमान हो गया, और उसके बाद फिर हमने मकूकस पढ़ा था वो मुसलमान नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो था, अच्छा वो नजाशी था, चौथा तो वो मुसलमान हो गया था, तीसरा नजाशी था मुसलमान हो गया था, और पहले दोनों मुसलमान हुए। हाँ, तो 3 आप सही कह रहे, तो 8 में से 5 मुसलमान नहीं हुए थे, 3 मुसलमान, ठीक है। चले, अब और कोई सवाल अगर नहीं है कोई ऐसी बात तो हम
सवाल ये था कि हम साहब ने अभी मकास बताया हूँ, तो साहब ने मकास नहीं बताया हूँ, तो सारी
नहीं, मेरा तो निकाल दो, नहीं है तो साहब में वकास और साहब में अभी वकास, अभी वकास ही सुना, साहब में वकास सुना भी नहीं, ठीक है।
अरहान को भी एक सवाल था, मैं तो कह रहा था इस तरह है स्विमिंग पूल
ये क्लास के अलावा सवाल है जिसका जवाब नहीं दिया
होगा।
जा सकता, कच्चे के नहीं होगा। अच्छा, ये जो है ना वो है तो ये इस तरह प्रोग्राम, वो लगता है जैसे हम वहां पे जाकर के इस तरह करने के लिए जा रहे हैं, इस तरह का मतलब होता है राहत हासिल करना, ठीक है, इसी वजह से उसको इस तरह कहते हैं। इस वजह से ना बेचारी इनकी जो बहनें वगैरह हैं और अम्मियां हैं वो बड़ी परेशान हो रही हैं, हम तो नहीं जा रहे तो ये क्यों जा रहे हैं। है, हमने ऐसा किया कि उनको भी ना सारा हमने प्रोग्राम भेज दिया कि वहां पे होगा क्या। अब सबको पता चल गया है कि ये बड़ा खतरनाक हो गया, ठीक है ना, ये कोई तफरी करने के लिए नहीं जा रहे वहां पर, बल्कि अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई और मार पिटाई भी होगी वहां कराटे वाली वैसे मार पिटाई नहीं होगी, कराटे वाली होगी, तो उसमें तो माशाल्लाह आप लोगों की चूल्हे दुख रही है आजकल। तो ये पढ़ाई लिखाई वाला है, तालीम तरबियत वाला सिलसिला, खेल कूद वगैरह जो है वो नहीं है, स्विमिंग तो बिल्कुल भी नहीं चले क्लास खत्म करते हैं, वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह, एसी ऑन करते हैं इससे पहले चिल्लाना शुरू करते हैं।
Recording stopped.